बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता
हूँ। वालेकुम सलाम खुर्रम, और मैं भी अपने अज़ीज़ नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और बहुत बहुत सुबह खैर कहती हूँ। और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आपका रोज़ा ठीक ठाक चल रहा हो, हमेशा की तरह आपको रोज़ा बिल्कुल ना लगे
बिल्कुल, और ना लगे और अच्छे अच्छे काम करें हम लोग
बिल्कुल
इस माह रमज़ान में। बुरी आदत को दूर कर दें अपने से, क्योंकि बेहतरीन मौका है बुरी आदत से छुटकारा पाने का।
बिल्कुल, और अगर आपने देखा हो कि यहाँ की ईरानी चैनल्स पे एक ऐड बनाया गया है,
अच्छा,
माह रमजान के मुतल्लिक है। वो ऐड कुछ इस तरह है कि आप उसमें सिगरेट नोशी को छोड़ने की जो है वो बता रहे हैं कि ये बेहतरीन महीना है जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि सिगरेट नोशी को छोड़ सके।
बहुत अच्छी बात की आपने। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सिर्फ सिगरेट नोशी ही नहीं है
बिल्कुल,
बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनको इखलाकी बीमारियां कहा जा सकता है, जिनको रूह की बीमारियां कहा जा सकता है। सही कह रहा हूं मैं ना?
अंदरूनी बीमारियां जो होती है इंसान में,
मिसाल के तौर पे झूठ बोलना, मिसाल के तौर पे जबान का बुरा इस्तेमाल करना, किसी को दुख पहुंचाना,
बिल्कुल
ये चीजें भी रुबा बहुत अहम है।
गुस्सा करना या ये चीजें बिल्कुल आपको किसी को दूसरे को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बीमारियों से भी हम यहाँ पे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती हैं।
बिल्कुल, जिस्मानी बीमारियां तो आपको निजाम को रेस्ट मिलता है, और बहुत सी और चीजें हैं जिसके असरात हमारे बदन पे पड़ते हैं रोजे की वजह से। बहरहाल ये चीजें हमें भी पता है, आपको भी पता है, सिर्फ जरूरत किस चीज की है? अमल करने की।
बिल्कुल, अमल करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम अमल कर सकें, हमारे रोजे बिल्कुल ठीक ठाक गुजरे, और रोजे के साथ साथ उन तमाम चीजों का भी रोजा हो जैसे जबान का हो गया, हाथ का हो गया, बिल्कुल अपने जिस्मानी आजा का भी हम रोजा रख सकें।
बिल्कुल ठीक आपने बात की। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि माह रमजान में हम लोग नया सेगमेंट चला रहे हैं, यानी चल रहा है माह रमजान के शुरू से चल रहा है रमजान सुबह जिंदगी के साथ, और उस सेगमेंट के सिलसिले में हम लोग लेके जा रहे हैं दुआ, मुलाहिजा फरमाएंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद कहता हूं नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह जिंदगी में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं 7:35 तेहरान टाइम के मुताबिक। तस्वीरी मुकाबले
बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी। बिल्कुल, हमारा तस्वीरी मुकाबला चल रहा है नाज़रीन, अपनी शहर की, अपनी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की तस्वीरें, जैसा रमजान वहाँ पे कैसे मनाया जा रहा है, इफ्तार कैसे मनाया जा रहा है, सहरी में आप क्या करते हैं, वहाँ की तस्वीर हमें लेके भेजिए। इंशाल्लाह कब हमारी कुरानदाज़ी होगी
के आखिर में, ईद के दिन इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे ईद के दिन ही कुरानदाज़ी कर डालें।
अच्छा, ईदी दे रहे हैं आप नाज़रीन?
बिल्कुल ईदी दे दें, और जो है इंशाल्लाह पे 3 खुशनसीब
इंशाल्लाह
लोगों को हम लोग जो है जो हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे उनको इनामात दिए जाएंगे, और इनामात को मुझे नहीं पता क्या दिए जाएंगे, ये तो सरप्राइज है।
अच्छा सरप्राइज, अच्छा है, अच्छा है। फिर नाज़रीन फिर आप अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजें ताकि आपको पता चल सके कि हमारा सरप्राइज क्या है।
बिल्कुल,
और हफ्ते का मौजू भी हम बताते चले नाज़रीन को।
जी बिल्कुल, हफ्ते का मौजू जो आज इख्तिताम पे पहुंच जाएगा, लेकिन बड़ा अहम मौजू था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, कम साथ दिया लेकिन फिर भी दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और मौजू हमारा था कि कैसे हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकें, मदद कर सकें कि वो इस्लामी अकायद को बेहतर तरीके से समझ सकें।
बिल्कुल, बहुत ही अहम मौजू है और हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये एक ज़र्ब मिसाल भी कहते हैं कि नौजवान नस्ल, आज की नौजवान हमारा कल का मुस्तकबिल है।
बिल्कुल जारी बात है। और देखिए नौजवानी एक सीढ़ी है, और उसके बाद जो चीज़ें आप इस सीढ़ी पे, इस लेवल पे सीख लेते हैं, वही चीज़ें आप पूरी जिंदगी
आप वो करते रहते हैं। बिल्कुल, आदत बन जाती है आपकी, और वही चीज़ आपके सामने आती है, और फिर आगे चल के वो खुद अपने बच्चों की भी वो परवरिश इसी तरह कर सकते हैं।
बिल्कुल, माँ बाप की तरफ से ही वो सारे आदत, वो इखलाक या इखलाक जो माँ बाप के होते हैं, वही बच्चों में, बच्चे वही देखते हैं और फिर वही सीख वहीं से सीखते हैं।
तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने नौजवान और अपने बच्चों को, हम क्या सिखा रहे हैं।
बिल्कुल, सिर्फ मैं फेसबुक एड्रेस यहाँ पर बताते चलूँ, facebook.com/SUT Morning Show हमारा फेसबुक एड्रेस है। आप लोग कोई भी चीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं
और प्रोग्राम में हमारा साथ भी दे सकते हैं।
बिल्कुल, और रमजान सुबह जिंदगी के साथ में एक और दुआ हम लोगों ने तैयार की है
माशाल्लाह, और साथ मिलकर ये दुआ देखते हैं और फिर अपने अजीज नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे
साथ रहेगा। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आप लोगों ने दुआ मुलाहिज़ा फरमाई, और बहरहाल प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार डेंटिस्ट हैं, वो इंशाल्लाह कुछ लम्हात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे दांतों की, मुँह की सफाई और कैसे बीमारियों से बचा जा सके, मुँह की बीमारियाँ, दांतों की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बारह जिस तरह की मुश्किल पेश आती हैं उनसे कैसे बचा जा सके। और उसके अलावा डॉक्टर अतिया निषाद दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और तगज़िये की माहिर हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे एक बड़े ही अहम मौजू पे जो खाने पीने से जिसका ताल्लुक है, और उसके बाद फिर प्रोग्राम से बुजुर्गों को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ है यहाँ पर एक दास्तान मुलाहिज़ा फरमाने हमने तैयार की है, उसका वक्त हुआ है, तो चलिए दास्तान मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हम और सुबह ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर लो हम लोग हाजिर हैं और वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, यहाँ पर रुबाब हमारा इंतजार कर रही हैं और चलते हैं रुबाब पर। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही खूबसूरत दास्तान आप हमारे अजीज नाज़रीन को दिखाई। नाज़रीन जैसे आप जानते हैं डॉक्टर विवेक कुमार हमारे साथ मौजूद है, डेंटिस्ट हैं, ओरल हाइजीन मुंह की सफाई के मुताबिक आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर मुंह की सफाई ना की जाए तो कौन कौन सी बीमारियों का जो है वो खतरा हमें हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम,
कैसे हैं आप डॉक्टर साहब?
बहुत सही,
और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।
आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, बहुत अहम मौजू ओरल हाइजीन मुंह की सफाई, अगर जरा सी वजाहत सबसे पहले हम ओरल हाइजीन के बारे में करें कि ये है क्या, तो बहुत मेहरबानी होगी।
मुंह का सही ढंग से ख्याल रखना, इसमें केवल दांत ही नहीं आते बल्कि मसूड़े आ गए, फिर जीभ आ गया, हर कुछ का सही ढंग से ख्याल रखना कि मुंह से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। इसके अलावा मैं बताता चलूं, पिछले प्रोग्राम्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओरल हाइजीन, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मुंह के होने वाली बीमारियों के अलावा कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर ओरल हाइजीन का मेंटेन नहीं रखा जाए। ठीक है,
ओरल हाइजीन में फिर से वही बात आ जाती है डॉक्टर साहब, दांतों को सही तरह ब्रश करना, फिर वो जो फ्लॉस करना दांतों को या माउथवॉश का इस्तेमाल करना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और फिर डॉक्टर के पास चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। खुद मुँह में अगर हम ओरल हाइजीन ना रखें या मुँह की सफाई का ख्याल ना रखें, कौन सी बीमारियाँ होने का खतरा है?
देखिए, कॉमन बीमारियां जैसे हैं कि अगर हम नहीं रखते तो सिंपल टर्म्स में जो आसान से लोगों के लिए होता है कि मुंह से जैसे खून आना, तो इसका एक इंडिकेशन है कि जो बैक्टीरिया है उसने अपना काम करना शुरू किया है, और जो भी कुछ हम खाते हैं वो मुंह में फंसा रह जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसा होता है कि हमारे मुँह में इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं जो कि इतने दुनिया में जितने इंसान भी नहीं होंगे उससे ज़्यादा बैक्टीरियाज हमारे मुंह में हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज पर अगर होना शुरू हुआ है उस टाइम पे अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो ना केवल मुँह की भी होने वाली बीमारियाँ जैसे कि दांत पेरियोडोंटाइटिस, एक बाद में जिंजिवाइटिस होता है जो कि जो मसूड़े होते हैं उसमें थोड़ा सा सूजन आना शुरू होता है, अगर उस टाइम पे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर बाद में जा करके कि बोन लूज होना शुरू हो जाता है, तो जो सॉकेट में जो टीथ रहते हैं, जो दांत रहते हैं जो हड्डियों में, तो वो उससे निकलने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि मसूड़े नीचे की तरफ जाते हैं, दांत ज्यादा दिखने लगते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि ये एडवांस स्टेज पर चला गया है।
अच्छा, ठीक है।
शुरुआती स्टेज में तो खून आएगा,
फिर सूजन होगी और फिर उसके बाद मसूड़े नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपको उसको केयर करने की बहुत जरूरत है, लेकिन जब लोग शुरू में ही इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर प्रॉपर ब्रशिंग किया जाए, ब्रशिंग के अलावा प्रॉपर ब्रशिंग करें, उसके बाद फ्लॉस करें, फिर डेंटिस्ट के पास विजिट करें, हर 6 महीने में विजिट करें। अच्छा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्केलिंग करने से जो दांतों की सफाई होती है उससे दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये एक भ्रम है, लोगों को इससे बचना चाहिए और दांतों की सफाई पे ध्यान देना चाहिए।
अक्सर ये बात सुनने में आई है कि आप स्केलिंग करें तो आपके दांत जो है वो कमजोर हो जाएंगे या वो जो है एक लेयर दांत का आपका हट जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है।
जस्ट ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ऐसा करने से दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है।
सही,
दांतों का ख्याल नहीं रखने से जो कैरीज वगैरह हो के दांत, लेकिन मैं हम लोग ये पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दांतों की बीमारियों से ना केवल मतलब मसूड़ों की, जनरली आप देखें कि बहुत लोगों के दांत काफी चमकते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पहला इंडिकेशन तब मिलता है कि जब सूजन है थोड़ा सा मसूड़ों में, खून आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों में ना केवल दांतों की बीमारियों बल्कि डायबिटीज, हार्ट के का प्रॉब्लम, इसके अलावा औरतों में स्पेशली प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस, जैसे जो बच्चे होंगे वो लो वेट के होंगे।
अच्छा, ठीक,
ये एक इंडिकेशन होता है। डायबिटीज का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर मसूड़ों की बीमारियां हैं तो, उसके अलावा हार्ट के जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अभी काफी कुछ रिसर्च हुआ है इस एरियाज में, तो इस रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट का प्रॉब्लम होने का जो चांसेस जो है, जो फिर गम डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं, जो मसूड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं उससे जो जुड़े पेशेंट्स हैं, जो उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग दांतों की सफाई साल में दो बार करा लेते हैं उनमें ये 24% तक कम होता है। लेकिन और अगर जो 2-3 साल में भी एक बार कराते हैं उसमें 13% कम होता है उनके तुलना में, उन लोगों की तुलना में जो कि सफाई उनके मुकाबले में जो कि सफाई बिल्कुल नहीं करते।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज की तरफ इशारा किया, दांत मुंह का ताल्लुक डायबिटीज से, एक अजीब सी बात खैर मेरे लिए है, लेकिन अगर आप वजाहत करें क्यों इस तरह होता है।
बिल्कुल, मैं बताना ये चाहूंगा आपको कि डायबिटीज जैसे है तो उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जो इस केस में है कि अगर पाया गया रिसर्च में कि जिन लोगों ने अपने दांतों का सफाई कर लिया ठीक से ढंग से, तो उनमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी कम होने लगा।
अच्छा।
जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं जब डायबिटीज के केस में कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों वाइस वर्सा है, मतलब एक दूसरे के वो हैं। अगर पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, अगर गम्स का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज होने का प्रॉब्लम बढ़ेगा, अगर डायबिटीज है तो पेरियोडोंटल डिजीज मतलब गम के प्रॉब्लम होने का, मसलों के प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के वो हैं, दोनों में से कोई भी दूसरे होने का कारण हो सकता है,
अगर है तो दूसरा हो
सकता
है, दूसरा
होने का कारण हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है,
काफी हद तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, एक बात जो ज़हन में आई, अक्सर जो हज़रात चूंकि हमारे एशिया वगैरह के उस तरफ या पाकिस्तान हिंदुस्तान में आपने देखा कि पान का इस्तेमाल बहुत होता है, पान या मुझे पता नहीं और भी क्या चीजें होती हैं, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल बहुत होता है, कहा जाता है एक सबब है माउथ कैंसर का भी, इसके अलावा लंग कैंसर का भी इसमें वो है, तो यही ओरल हाइजीन का किरदार कितना गहरा है।
बिल्कुल, काफ़ी हद तक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने मतलब सवाल आपने पूछा है। इसमें ऐसा होता है कि जो कैंसर्स होते हैं खास तौर से ओरल कैंसर्स, उसका भी जो इंडिकेशन है वो मिल जाता है ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहने का, जो उजले वाइट कलर के जो पैचेस बनने शुरू होते हैं सफ़ेद कलर के, इसका मतलब है वो लीकोप्लेकिया कहते हैं उस कंडीशन को। तो उस केस में क्या है कि ये बाद में जाके कैंसरस हो जाता है, जो तंबाकू खाते हैं जैसे बीटल नट एरेका नट, इसके अलावा स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग
तंबाकूनोशी जो है,
बिल्कुल इसके कारण से जो ओरल कैंसर स्पेशली ओरल कैंसर होने का चांसेस जो होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है।
डॉक्टर साहब इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे, ओरल कैंसर के बाद लंग कैंसर वगैरह पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन हमें चलना है खोरम के पास, देखते हैं खोरम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। जी खोरम,
बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की गुफ्तगू जारी रहेगी और वक्त हुआ है एक नात मुलाजा फरमाइए और उसके बाद हम लोग डॉक्टर विवेक कुमार के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रहेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने नात मुलाहिज़ा फरमाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वक्त हुआ है दोबारा रुबाब की तरफ जाने का, तो चलते हैं रुबाब की तरफ चलते हैं ताकि रुबाब गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, नाज़रीन को एक बार फिर बताए चलूँ हमारा मौजू चल रहा है ओरल हाइजीन मुंह की सफाई, डॉक्टर विवेक कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विवेक कुमार, आपने कुछ बीमारियों की तरफ इशारा किया कि अगर मुंह की सफाई ना हो तो उनको ऐसा डायबिटीज़ जैसे हम बात कर चुके हैं, और इसके अलावा बताया हार्ट की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, तो हार्ट का और मुंह की सफाई का क्या ताल्लुक है आपस में?
देखिए, जैसे हम देखते हैं कि मुंह से खून आना शुरू हुआ, वैसे जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू हुए।
अच्छा।
तो वो जो होते हैं जैसे कि इन्फ्लेम्ड करते हैं जिंजाइवा को, और वो ब्लड वेसल्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन होता है, जैसे ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ब्लड वेसल्स में एनफ ब्लड के फ्लो का स्पेस नहीं मिल पाता,
जिससे
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रेशर जो है उसमें आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर लगेगा वो ब्लड को,
ज्यादा प्रेशर लगेगा काम करने में,
बिल्कुल, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इससे स्ट्रोक होने का खतरा काफी बढ़ेगा। मैं आपको एक बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि हाँ, जो डेंटिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके मसूड़े से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रही है, तो उस टाइम पर ही वो पता लगा लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं कि हाँ, इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में वो ऐसा पाया जाता है कि जिन लोगों को गम प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, उनमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई पाया जाता है।
अच्छा, वो खून के जमने की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर जो है ऊपर नीचे होता रहता
बिल्कुल,
है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उस आर्टिकल में आप बेहतर जानते हैं मुझसे, उसमें ये लिखा था कि मेदे की मुख्तलिफ बीमारियाँ भी मुँह की सफाई से उनका आपस में ताल्लुक है। तो ये बात आया दुरुस्त है या नहीं?
बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत सही है। देखिए पहले तो हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर हमारे दांत सही नहीं होंगे तो हम जो खाना खाते हैं कोई भी चीज़ खाते हैं वो ठीक से हम चबा नहीं पाएंगे। तो जब ठीक से मैस्टिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक से हम चबा नहीं सकते खाने को, तो उससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ेगा कि वो जो ठीक से पचेगा नहीं, मतलब खाना जो है, क्योंकि वो ठीक से चबाया नहीं गया है। तो इस तरीके से भी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मैदे की जो बीमारियाँ हैं वो कॉमन पाई जाती हैं इस वजह से भी। दूसरा ये है कि लंग से प्रॉब्लम जैसे निमोनिया है,
अच्छा।
ये इसका भी खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है जब अगर हम ओरल हाइजीन का मेंटेन नहीं रखें। तो इसमें भी देखा गया है कि इस चीज़ों में भी काफ़ी आजकल काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और हर रिसर्च में ये पाया जा रहा है कि ऐसा पाया जा रहा है कि मतलब जिन लोगों ने ओरल हाइजीन नहीं ठीक से मेंटेन रखा है, मुंह की सफाई ठीक से नहीं की है, उनमें इन सब चीज़ों के होने का खतरा काफ़ी गुना
बढ़ जाता है
उन लोगों की तुलना में जो कि अपने मुंह का सही ढंग से ख्याल रखते हैं।
डॉक्टर साहब, और कोई खास बीमारी आपकी नज़र में है जो हम अपने हाजिन को बताना चाहें जो इससे हो सकता है ओरल हाइजीन की ना होने की वजह से?
देखिए जो हमारा मुँह होता है वो गेट कीपर होता है, मतलब बाहर की दुनिया से और शरीर के अंदर के पार्ट से
एक तो रास्ता है जिससे आप ये नहीं बोल सकते दो चीज़ों का ताल्लुक।
बिल्कुल
हो रहा
बिल्कुल, बाहर की दुनिया और मतलब अंदर। तो जो हमारा मुंह है, जो हम लोग खाते हैं जहाँ से, तो ये इसका असर पूरे के पूरे बॉडी पे पड़ता है, पूरे के पूरे शरीर पे पड़ता है, मतलब जो भी केवल एक चीज़ पे नहीं। अब मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, तो इससे दांतों के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं,
अच्छा।
जो कि इन सब हर शरीर के हर पार्ट्स पे इसका असर पड़ता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूंकि ओरल हाइजीन पे बात कर रहे हैं तो ये भी बात करते हैं कि किस तरह सफाई, खैर टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह के अलावा कहा जाता है कुछ घरेलू टोटके भी होते हैं, मुझे नहीं पता, कहते हैं कि आप कोयले को पत्नी सोडे के साथ मिला के दांत पे मलिए तो बेहतर होता है, दांत की सफाई हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाए। आया ये घरेलू टोटके भी आजमाना चाहिए या नहीं, दांत को सिर्फ उन्हीं केमिकल से ही साफ करना चाहिए?
देखिए बेहतर तो ये हो है कि अगर आप माउथ वॉश यूज़ किया जाए दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट के अलावा, लेकिन घरेलू टोटके में जो होते हैं नमक से गार्गल करते हैं काफ़ी लोग, इसका असर पड़ता है काफ़ी हद,
अच्छा।
तक। लेकिन इसके अलावा लौंग होता है, लौंग की जो तेल, लौंग का जो तेल होता है उस, वो भी अगर काफ़ी आपको ज़्यादा दांत दर्द कर रहा है तो थोड़े से रुए में लौंग के तेल को लगा करके उस पार्ट्स पे लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। लेकिन यह जो होता है यह मतलब तुरंत का काम है, मतलब टेम्प्रोरली प्रोसेस है, लेकिन इसको बाद में जाकर के अगर दांत दर्द है तो इसको अवॉइड ना करके इसको बाद में जाकर के ट्रीटमेंट के तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि अगर अवॉइडेंस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
ठीक है,
इसको जब हो तभी जाकर के इसको ट्रीटमेंट के लिए
दिया जाए। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मुंह का ताल्लुक कान से भी है अगर देखा जाए, आया ऐसा हो सकता है कि हमारे ओरल हाइजीन का असर हमारे कान पे भी पड़े या नहीं?
देखिए साइंटिफिकली जो है मतलब ऐसा तो असर पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बीमारी जो बोला जाता है कि हाँ मुंह से कान का बीमारी जिसका कोई नाम हो, इस तरह से नहीं होता।
ठीक है,
जो मोस्ट कॉमन होता है पूरे शरीर में वो होता है बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, जो कि एक पी जिंजिवाइलिस एक बैक्टीरियाज है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जब ये इंटर करता है, प्रवेश अंदर चला जाता है,
ठीक है,
जो ब्लीडिंग होने से,
सही।
तो वो दांतों में जो मतलब सूजन आता है उसके बाद जो ब्लीडिंग होता है जिसको पायरिया कंडीशन कहते हैं, उसके अंदर जो चला जाता है उसके बाद हार्ट अटैक होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी, ओरल हाइजीन के मतलब हम गुफ्तगू करें, लेकिन नाज़रीन यहां वक्त है खुर्रम की तरफ चलने का, देखते हैं खुर्रम हमें कहां लेके जाएंगे। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया। रुबाब आप लोग तैयार हैं? हम लोग दिल्ली स्टूडियो की तरफ जाएं। बहरहाल जो है हमें बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अतिन निषाद से, लेकिन पहले मुझे जाना है मेरी एलसीडी स्क्रीन की तरफ, और जहां पर मैं आपको कुछ खूबसूरत से फरमान हमारे आइमा के और पैगंबर के आप लोगों की खिदमत पेश करूंगा। मौला कानात हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नफ्स का दुनियावी लज्जतों से रोज़ा मुफीद तरीन रोज़ों में से है। फिर मौला कानात ने एक और जगह फरमाया, और ये फरमान पर मुझे भी बहुत पसंद है, कि मौला फरमाते हैं कि कितने ज़्यादा हैं वो रोज़ेदार जिनको रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। और मौला फिर फरमाते हैं कि कितने ज़्यादा हैं वो तहज्जुद गुज़ार और वो शब जो लोग नमाज शब पढ़ते हैं कि जिनको बेख्वाबी के सिवा कोई फ़ायदा नहीं नसीब होता। इसके अलावा मौला कायनात ने फरमाया, कल्ब का रोज़ा ज़बान के रोज़े से बेहतर है और ज़बान का रोज़ा पेट के रोज़े से कहीं बेहतर है। इसके अलावा मौला कायनात फरमाते हैं, रोज़ा हराम से परहेज़ का नाम है, जिस तरह के इंसान खाने और पीने से پرہیز کرتا ہے. یہی فرمان میں جاری رکھوں گا آپ کے ساتھ. یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا تاکہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہ رہے. اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے روزہ واجب کیا گیا تاکہ لوگ پیاس اور بھوک کو سمجھ سکیں, تاکہ یہی لوگ آخرت کی بیچارگی اور فقیری کو بھی سمجھ سکیں. اس کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرمی کے موسم میں روزہ جہاد کے برابر ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں ایک بار پہلے آپ کے لیے. اس کے علاوہ مولا کائنات نے فرمایا, امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ آنکھوں کا, کانوں کا, بالوں کا اور جلد کا بھی ہونا چاہیے. پر یہ کچھ فرمان تھے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے. ابھی ہم لوگ چلیں گے دہلی اسٹوڈیو کی طرف. ڈاکٹر عطیہ نشاط ہمارا انتظار کر رہی ہیں وہاں پر, چلتے ہیں ان سے گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر عطیہ نشاط آپ کی خدمت میں, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ایک بار پھر ٹائم نکالا اور ہمارا موضوع جو ہے آپ نے بہرحال انتخاب کیا اینوریکسیا کے بارے میں. کیا ہے کیا ڈاکٹر صاحب اینوریکسیا؟
وعلیکم السلام خرم. دیکھیے جیسے کہ بہت سے لوگوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے, وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے, انہیں کچھ دکھے گا تو انہیں کھانا ہے, موٹے ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی کھانے پینے پہ بالکل کنٹرول نہیں ہوتا.
صحیح.
اب جہاں تک اینوریکزیا کا سوال ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ بالکل الٹا ہوتا ہے.
اچھا.
مطلب وہ کھا ہی نہیں پاتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے یا کھائیں گے تو ان کو فوڈ انٹالرنس ہو جائے گا, الرجی ہو جائے گی. کھانے سے ایک قسم کا ان کو ریپلشن ہوتا ہے کہ کھانے سے وہ دور بھاگتے ہیں. اب یہ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن صرف امریکہ میں بھی اگر دیکھا جائے, صرف امریکہ کے اندر 0.5 سے 1% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں. مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اس بیماری میں.
صحیح.
اور بیسیکلی یہ جو اینوریکسیا نروزا کی پریشانی ہوتی ہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ ڈائٹ سے ریلیٹڈ. یہ زیادہ تر مطلب 90 سے 95% یہ لیڈیز میں پائی جاتی ہے, خاص کر ینگ لڑکیاں جو جیسے ٹین ایج اور ینگ ایڈلٹ ایج جو ہوتی ہے جیسے ارلی 20s, اس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے.
صحیح.
اور یہ بمشکل تمام 10 یا 5% مرد حضرات میں ہوتی ہے, یعنی میلز میں ہوتی ہیں.
صحیح.
اور اس کی جو امپلیکیشنز ہوتے ہیں ہیلتھ پہ بہت سے ہیں. جیسے سب سے پہلے تو آپ کو جلد میں دکھنا شروع ہو جائے گا, جیسے ان افراد کی جلد بہت ہی پیلی ہوتی ہے اور بالکل اس میں گلو جس کو کہتے ہیں نا رونق, کیونکہ چربی کا وہ بالکل استعمال ہی نہیں کرتے ہیں اپنی غذا میں, تو وہ بالکل سوکھی اور پیلی سی اسکن دکھے گی. دوسرا ایک بہت ہی خاص اس کی علامت ہے کہ ان کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے بال نکل آتے ہیں, یہاں تک کہ چہرے پر بھی. مطلب اب لڑکیاں ہیں لیکن ان کے بھی چہرے پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. اور تیسری علامت آف کورس وہ بہت ہی اب نارملی پتلی دکھتی ہیں وہ لڑکیاں, ایک دم آپ دیکھ کر ہی انہیں پہچان جائیں گے کہ یہ شاید جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے, بہت ہی پتلی ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی فیزیولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں اس میں سب سے خاص یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مینسوریشنل سائیکل مس کرنے لگتی ہیں, جسے ہم ایمنوریا کہتے ہیں, کیونکہ ان کے جسم میں اتنا خون ہی نہیں ہوتا ہے, آئرن لیول اس قدر کم ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے پیریڈس مس ہونے لگتے ہیں, یہ ایک علامت ہے. دوسری انہیں کڈنی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد, کیونکہ وہ پانی جب کھانا کم کھاتے ہیں تو پانی کا بھی استعمال کم ہوتا ہے, اور الیکٹرولائٹس کیلشیم پوٹیشیم اور میگنیشیم یہ تین بہت ہی کم ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں, اس کی وجہ سے بھی کڈنی فنکشنز میں افیکٹ پڑتا ہے, کڈنی کی بیماری ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اور اکثر ان لوگوں کو کڈنی سٹون ہو ہی جاتا ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ ان کے ناخون ٹوٹتے ہیں, برٹل نیلز ہو جاتا ہے, غذا پونی نہیں مل رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے بال بہت ہی پتلے اور برٹل ہوتے ہیں, مطلب ذرا کوم کرنے سے بھی کنگھی کرنے سے بھی ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں. تو یہ ساری اس کی پریشانی ہے اینوریکسیا نروزا کی, اور یہ بالکل یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ریئر ڈیزیز ہے یا دیکھنے میں نہیں ملتا ہے, یہ بہت ہی اب دھیرے دھیرے آج کل جو ماحول ہو رہا ہے کہ پتلے رہنا ہے اور اس قسم کی ڈریس پہننی ہے, اس ماحول میں یہ پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطیہ نشاط, ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ڈاکٹر عطیہ نشاط سے ہم مزید گفتگو کریں گے. یہاں پر چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے. پروگرام صبح زندگی چلتا رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. जी नाज़रीन, आप खिदमत में एक बार फिर हम लोग हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ, और डॉक्टर अतिन निशात हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है एनोरेक्सिया की बीमारी, जो खाने पीने से मुतालिक जो बीमारी है, बहरहाल उसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर साहब, क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस बीमारी की वजह से?
खुर्रम, अभी जैसे मैंने बताया कि मतलब जो ज़ाहरी परेशानियां हैं स्किन और जल्द से रिलेटेड, और उसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल परेशानियां हैं, जो मैंने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एमनोरिया यानी पीरियड में सोना और इस किस्म की और दीगर परेशानियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा मतलब ये तो फिजियोलॉजिकल हो गई परेशानी या ज़ाहरी परेशानी हो गई, उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और कॉम्प्लिकेशन इसका है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ऐसे लोग अक्सर, जैसे मैंने बताया कि यंग एज में होता है, जैसे अपनी टीन एज या अर्ली ट्वेंटीज़ में, तो ऐसे लोग अक्सर ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अच्छा। उनका एक तो मेंटल अलर्टनेस उनकी काफ़ी लो होती है, उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, उनको उनका आधा जहन इस चीज़ पे लगा है खाना नहीं खाना है, या खाना अगर खाना है तो कैलोरीज नापते तोलते रहते हैं कि इतना फैट जा रहा है, इतना कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, इतना प्रोटीन जा रहा है, हत्ता कि जिस चीज़ पे जहन लगना चाहिए उसकी बजाय दूसरी चीज़ पे लगा हुआ है। तो ये एक बहुत इसका अलग पहलू है और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होता है, और जब इसका इलाज होता है, जब इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे पहले इसी पहलू को एड्रेस किया जाता है कि उनका जो मेंटल स्टेटस है या जो जिस तरीके से वो सोचते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको एड्रेस करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा होता है, ये भी देखने को मिलता है कि कुछ अरसे तक तो खुद अवॉइड करती हैं लड़कियां कुछ ख़ास ग़ज़ाएँ, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो फिर अगर उस चीज़ को खाना चाहें भी सही तो वो नहीं खा पाती, मतली की हालत हो जाती है, उल्टी सी आने लग जाती है, ऐसा मुमकिन है?
ये बहुत ही ख़ास बात कही खुर्रम साहब आपने, ये एनोरेक्सिया की बहुत ही ख़ास अलामत है कि जब हम खाना छोड़ देते हैं, ख़ास कर ये फैट को लेकर होता है, चर्बी वाली ग़ज़ा जो है, तो अगर जैसे हमने 6-7 महीने तक नहीं खाया, उसको 8 महीने, लड़कियां तो मैंने देखा है 2-2 साल तक बिल्कुल कोई फैट नहीं खाती हैं, तो जब वो उस चीज़ को वापस अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करती हैं, जब उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है या उनको डाइटरी इंटरवेंशन किया जाता है कि नहीं भाई आपको खाना है, तो अक्सर उनको ये सिम्टम्स जाहिर होने लगते हैं, उन्हें लूज मोशन होने लगता है,
सही है,
किसी किसी को ब्लोटेड फील होता है, यानी पेट बिल्कुल फूला लगता है, बहुत सी वॉमिटिंग मतलब उल्टी करने लगते हैं। तो इस केस में ये मतलब दो अप्रोच है, एक तो ये अप्रोच है कि उनको एडमिट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को,
अच्छा।
मतलब उनको इन पेशेंट बनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ग्रेजुअल यानी बहुत ही धीरे से उनके ग़िज़ा में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं वन बाई वन, धीरे धीरे, ताकि उनका टॉलरेंस उस चीज़ के लिए वापस आए, बॉडी में वो ऑलरेडी था लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसे
ख़त्म किया,
तो अब वो चीज़ वापस आए। और अगर कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है, यानी बंदे का BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है बहुत ज़्यादा सीवियरली लो नहीं, यानी 16-17 नहीं पहुंच गया, यानी और भी नीचे 15 तक नहीं पहुंच गया, तो उसको हम आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीट करते हैं, यानी उनको हम ग़िज़ा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि उनकी पूरे हफ्ते की ग़िज़ा में सिर्फ 250 से 300 किलो कैलोरीज हम एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। ये बहुत ख़ास बात है, अगर हम इससे ज़्यादा उन्हें खिलाने की कोशिश करेंगे, ख़ासकर फैट यानी जो चर्बी वगैरह होती है, तो उनको जैसे कि आपने कहा कि उल्टी और बाकी और सारी कंडीशंस शुरू हो जाएंगी।
डॉक्टर अतिन निशात, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पे आप गुफ्तगू कर रही हैं, आजकल का एक बड़ा ही संजीदा मसला है। गुफ्तगू डॉक्टर अतिन निशात के साथ हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे रुबाब की तरफ, ताकि रुबाब डॉक्टर विवेक कुमार के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ा सकें। जी
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतिन निशात साहब, बहुत ही अहम मौजू है। डॉक्टर विवेक कुमार, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, ओरल हाइजीन का अगर हम देखा जाए, सबसे पहला स्टेप है इंसान, जैसे आपने बताया बैरूनी दुनिया और अंदरूनी दुनिया का जो इंसानी जिस्म का ताल्लुक है, मुँह से बदबू आना मेरे ख्याल से ये सबसे एक अहम बीमारी है, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे हैं और फिर एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसमें ओरल हाइजीन में हमें क्या करना चाहिए कि मुंह से बदबू आपके ना आए?
ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मुंह से बदबू आना एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि हम ओरल हाइजीन का सही ढंग से ख्याल नहीं रख रहे हैं।
ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि पानी को बहुत कम पीना, एक कारण तो ये होता है, जैसे कि अगर आप लास्ट खाना जो खाते हैं रात में उसके बाद जो है ब्रश करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो खाना अगर अंदर फंसा रह जाता है और रात और मॉर्निंग का जो ड्यूरेशन होता है सुबह और रात का, तो उसके बीच में ये जो मुँह बंद रहेगा, हम लोग सोएंगे और फिर खाना जो फंसा रह गया उसके कारण से जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा मुँह बंद होने के कारण, तो उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह की बीमारी जो होती है जो मुंह से बदबू आने को, उसको कहते हैं हेलोटोसिस, और 80% लोगों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनको हेलोटोसिस है।
अच्छा ठीक।
तो इसमें क्या होता है कि मुंह सूखा रहता है, उसके बाद जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, फिर बदबू आनी शुरू हो जाती है, इसका पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, मतलब लोग किसी से बात करने में हिचकिचाने लगते हैं, कहीं कहीं मतलब उनका जो पर्सनालिटी होता है वो काफी डिग्रेड होता है, मतलब नीचे की तरफ आता है,
बात करने से कतराते हैं, एक तरह से शर्म सी आती है उनको,
उनको शर्म सी आती है, कहीं बात करने से घबराते हैं, शर्माते हैं।
तो डॉक्टर साहब एक बात, अब ये किसी को ये मसला पेश आ गया मिसाल के तौर पर, तो क्या किया जाए, क्योंकि आप जिस तरह आपने कहा इंसान की शख्सियत पे बहुत गहरा ताल्लुक है इसका, क्या किया जाए इस चीज के लिए?
इसके लिए ये है कि ये कोई खास बीमारी नहीं है, इसको क्या है कि इसको ओरल हाइजीन मेंटेन रख के ब्रश करके, प्रॉपर ब्रशिंग करके, दो मिनट ब्रशिंग करना है और दो टाइम ब्रश करना है, उसके बाद फ्लॉस का यूज करें। फ्लॉस बहुत लोग हफ्ते में एक बार यूज करते हैं,
बहुत लोग तो नहीं
बहुत
करते,
लोग नहीं यूज करते।
एक बार यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि फ्लॉस का इस्तेमाल करने से दांत के बीच में जो है वो फासला बढ़ जाता है, बहुत से लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए,
ये गलत है। अगर टूथपिक का यूज कर रहे हैं तो उसके कारण से दांतों के बीच का फासला बढ़ जाता है, लेकिन फ्लॉस इस तरह से डिजाइन होता है कि उसको अगर करते हैं तो अंदर के दांतों के बीच की जो खाना फंसा रह जाता है या कुछ वो है तो उसको साफ हो जाता है। अच्छा। खाना बीच का, तो इसलिए फ्लॉस का यूज जरूर करना चाहिए, उससे दांतों के बीच का जो गैप होता है वो नहीं बढ़ता है,
नहीं बढ़ता,
टूथपिक को अवॉइड करना चाहिए।
डॉक्टर साहब ये बहुत अजीब सा सवाल है मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब डेंटल फ्लॉस उनके पास नहीं होता तो बहुत सी और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, धागा हो गया, जो कपड़ा सीने वाला धागा हो गया उसका इस्तेमाल, या यहाँ तक प्लास्टिक की थैलियों को फाड़ के, ये चीज मैंने देखी है अपनी पर्सनल लाइफ में, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे जो है प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि वो फ्लॉस अगर नहीं करते तो उससे ज्यादा खतरनाक ये है कि अगर जो आप फ्लॉस के तौर से अगर आप धागे को यूज कर रहे हैं या प्लास्टिक के उसके कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, या इन्फेक्शन भी हो सकता है कहीं ना कहीं इसके वजह से।
बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ हमें चलना है खुरम की तरफ, देखते हैं खुरम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया,
हम लोग दोबारा जो है जाएंगे दिल्ली स्टूडियो की तरफ, डॉक्टर आतिन निषाद की तरफ। डॉक्टर साहब, एनोरेक्सिया का इलाज क्या है?
खुरम साहब, इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एनोरेक्सिया किन अफराद में ज़्यादा होता है।
अच्छा, ज़रूर।
ऐसा देखा गया है कि इसका थोड़ा सा जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन होता है, मतलब जिनकी फैमिली में एनोरेक्सिया है या ख़ासकर बहनों में अगर है एनोरेक्सिया तो 20-30% ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि दूसरे सिबलिंग्स में भी ये आएगा, तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये शायद जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। दूसरा इसका एक खास पहलू ये है कि जिन अफराद में कॉर्टिसोल का लेवल, एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस तब रिलीज होता है, तो जिन अफराद में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है और साथ साथ सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, यानी जो रिलैक्सेंट हार्मोन होते हैं, तो उनमें देखा गया है कि एनोरेक्सिया ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी ज़्यादा आसानी से होता है। तो जब इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो इसका इलाज है, तो उसका सबसे पहला पहलू यही है कि इनका ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसमें, इसको एड्रेस किया जाए। इसके लिए दवाइयाँ भी हैं जो एंटी डिप्रेसेंट हैं या कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने के लिए हैं, ये पहली चीज़ है। दूसरा है इसका एक तरीके का साइकोलॉजिकल, ये बीमारी है, परेशानी है, तो इसको साइकोलॉजिकली ही ट्रीट करते हैं, इनकी काउंसलिंग होती है, इनका पूरा बाकायदा सेशन होता है। और तीसरा है डाइटरी इंटरवेंशन, यानी इनकी ग़िज़ा डिज़ाइन की जाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं इंट्रोड्यूस करते, आपने भी कहा कि उनको उल्टी और ये और सारी परेशानी शुरू हो जाती है एकदम से ग़िज़ा ज़्यादा खाने से, तो धीरे धीरे इनकी डाइट बढ़ाते हैं, कैलोरीज बढ़ाते हैं। हफ्ते में हम टारगेट रखते हैं कि ये 250-300 किलो कैलोरी ज़ायद खाएं अपने खाने से। इनको हम आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से डाइट नहीं देते, जैसे कि नॉर्मल जो हमारी डाइट का जो पैमाना होता है वो ये होता है कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए केजी, जैसे आपका आइडियल बॉडी वेट 72 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 30 किलो कैलोरीज एनर्जी, तो जितनी कैलोरीज आएगी उतना आपको दिन में खाना चाहिए। लेकिन इन अफराद पे ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, और अगर हम इनको इस कदर गज़ा देंगे तो एक ड्रेस्टिक चेंज आएगा। तो ये 3-4 अप्रोचेज हैं जिनको हम ध्यान में रख के इनकी डाइट और साइकोलॉजिकल इस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं और इनका इस तरीके से इलाज होता है।
डॉक्टर निशाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, बड़ी अहम बीमारी की तरफ इशारा किया जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, क्या ख्याल है, चलें हम लोग सैर करते हैं ईरान के कुछ खूबसूरत से पहाड़ी इलाके, सरसब्ज इलाके, और लाईजान एक शहर है, मशहूर शहर है ईरान का, वहाँ की आप लोगों की सैर करवाएंगे, उसके बाद आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाईजान की आप लोगों ने सैर की, जल्दी से चलेंगे हम रुबाब की तरफ। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, जैसे हम सबको पता है वक्त बहुत कम है, डॉक्टर साहब आखिरी जुमला ओरल हाइजीन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे नाजरीन के लिए?
मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें तो आप फिट रहेंगे
जी।
मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ साथ ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप ओरल हाइजीन का सही ढंग से अगर आप मेंटेन रखते हैं तो ना सिर्फ आप दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि शरीर में होने वाली कई सारी बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसलिए इस अभी माह रमज़ान चल रहा है तो लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें कि अब जो वो सहरी करते हैं उस टाइम पर जब ब्रश कर लें पानी पीने के बाद खूब सारा, क्योंकि इसके बाद जो ड्यूरेशन होता है सहरी और इफ्तार में वो काफ़ी लंबा होता है, तो खाना मुँह में कुछ फंसा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद ये
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ लाए जी। खुर्रम
जी, बहुत शुक्रिया रुबाब, डॉक्टर विवेक कुमार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अहम मौजू पर उन्होंने रोशनी डाली। बहरहाल वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि अगले हफ्ते का मौजू इंशाल्लाह हमारा होगा शब कद्र रमज़ान का दिल, और इंशाल्लाह इस मौजू पर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर आतिया निशाद का जिन्होंने दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर विवेक कुमार जो हमारे साथ यहाँ पर तेहरान स्टूडियो में मौजूद थे, और इंशाल्लाह हमें मुझे खुर्रम गर्देजी को और रुबाब मंसूरी को हफ्ते के दिन तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।